भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 44 44 भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भाषांतर श्री प्रभुपाद जी द्वारा जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मन में या उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता है। हरे कृष्ण। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरोर्श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।
हम देख रहे हैं श्लोक संख्या 42 से भगवान चर्चा कर रहे हैं। कौन से भाव की चर्चा कर रहे हैं? सकाम भाव, सकाम कर्म। बहुत अच्छा फ्लो है यदि ध्यान रखें। भगवान बहुत अच्छी तरह से अर्जुन को समझा रहे हैं एक एक बात। ऐसे नहीं है कि कोई पटाख से कोई विषय उठा लिया भगवान ने और बस बोलते जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी तरह से भगवान एक एक विषय को बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। तो हम देखे हैं 42-43 मतलब 42 और 43 श्लोक में भगवान किसकी चर्चा करते हैं? अल्पज्ञानी, अल्पज्ञ मनुष्य। क्या कहते हैं? अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, है ना? वेदवाद रतः पार्थ नान्यदस्तिति वादिनः यमिमां पुष्पितां वाचम। अलंकारिक भाषाओं के प्रति आसक्त रहते हैं, उसमें भी कहा है और यहाँ पे भी भगवान क्या कह रहे हैं? भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रभुत चेतसाम। ऐसे लोगों की जो अल्पज्ञ लोग हैं, किस प्रकार से तया प्रभुत चेतसाम, किस प्रकार से वेदों की अलंकारिक भाषाओं में ज्यादा आसक्त आकर्षित रहते हैं दोनों श्लोक में। और फिर कहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति अच्छे जन्म शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करती है, मतलब वो लोग उस प्रकार से वेदों के वाणी पे आकर्षित होते हैं जो वाणी क्या करती है? जन्म शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की करने को संस्तुति मतलब करने के लिए कहती है। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ है ही नहीं। तो भगवान ने 42-42 श्लोक में सकाम कर्मी की चर्चा की, किस प्रकार से सकाम कर्मी का स्वभाव होता है, क्यों वो वेदों के वो सुंदर पुष्पित उस अलंकारिक भाषा के प्रति आसक्त हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। तो फिर यह बात कैसे आई, कोई भी विषय की चर्चा करनी हो या किसी को उपदेश देना हो तो क्या करना चाहिए, दोनों बातों की चर्चा करनी चाहिए, दोनों पार्टी का समझ लेना चाहिए क्या कहना चाहते हैं, है ना। इसी प्रकार से इस संसार में द्वंद्व है, मतलब दो विषय होते हैं, है ना, तो दोनों पहलू को समझना चाहिए। तो भगवान अर्जुन को दोनों पहलू को समझा रहे हैं, याद है हमको, भगवान ने यह 42 के पहले समझाया भक्ति योग, पहले समझाया बुद्धि योग, बुद्धि योग अर्थात भक्ति योग कहते हैं भगवान, पहले उन्होंने 39 से लेके तो 41 तक 39वें श्लोक से लेके तो 41वें श्लोक तक बताया बुद्धि योग क्या है अर्थात भक्ति क्या है, किस प्रकार से शुद्ध स्तर पे आके हम कर्म कर सकते हैं। तो भगवान ने इस प्रकार से पहले ही चर्चा की बुद्धि योग की, जिससे कि कर्म बंधन में न फंसे। भगवान ने उसके पहले कहा, देखो मैंने अभी तक तुमको पूरा सांख्य बताया, याद है आपको, स्मरण में है, भगवान कहे देखो हमने अभी तक आपको पूरा सांख्य बताया, पर अभी मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो सांख्य में नहीं है। कौन सी बात बताई भगवान ने जो सांख्य में नहीं है, वो है बुद्धि योग। बुद्धि योग अर्थात भगवान कहते हैं भक्ति योग। तो भक्ति योग का, भक्ति योग बताया है भगवान, तो भक्ति योग का उद्देश्य क्या है, भक्ति योग का उद्देश्य है कि कोई कर्म बंधन में न फंसे। भक्ति योग करने से क्या होता है, हम कर्म बंधन में नहीं फंसते। तो उस तीन श्लोक 39, 40 और 41 में भगवान ने उसी की चर्चा की है, भक्ति योग की, जिसके के कारण हम कर्म बंधन में नहीं फंसते। ऐसा करने से हम कर्म बंधन में नहीं फंसते। फिर 40वें श्लोक में उन्होंने बताया ये जो योग है भक्ति योग, इसकी विशेषताएं क्या है बुद्धि योग की, फिर तीन विशेषताएं उस श्लोक में, नेहा विक्रम नाशो अस्ति पत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि मस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तीन विशेषताएं बताइए, इसमें कोई खर्चा नहीं होता है, कोई खर्चा नहीं होता है, थोड़ा सा भी कर्म करो, थोड़ा सा भी भक्ति करो, चल जाता है, और बड़े भय से रक्षा होती है। अर्थात भगवान ने भक्ति योग की तीन विशेषताएं भी बता दी है 40वें श्लोक में। 41वें श्लोक में फिर कहते हैं भगवान, 41वें श्लोक में कहते हैं देखो इतनी महत्वपूर्ण बात है बुद्धि योग, सांख्य पहले समझाया, सांख्य से महत्व का है बुद्धि योग, बुद्धि योग में भी क्या लाभ है वो भी बताया है, पर कुछ लोग बुद्धि योग को फॉलो नहीं करते, कुछ लोग बुद्धि योग या भक्ति योग का आचरण नहीं करते। तो जो लोग नहीं करते उनकी क्या अवस्था होती है, तो कहते अव्यवसायत्मका बुद्धि, जो मतलब पहले तो व्यवसायत्मका बुद्धि बताया है कि किस प्रकार से भगवान में उनकी मति लगी रहती है, और जो अव्यवसायी है वो देखिए 41 श्लोक, बहु शाखा अनंताश्च अव्यवसायिना, उनकी बुद्धि क्या हो जाती है, अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाती है। अब जब उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाती है तो वो लोग भक्ति योग नहीं कर पाते, अर्थात बुद्धि योग नहीं कर पाते अर्थात भक्ति योग नहीं, फिर वो क्या करते हैं, उन्होंने क्या करना चाहिए, वो कौन से स्तर पे है। तो इसके आगे कहते हैं फिर उन्होंने पांच प्रकार के बुद्धिहीन लोगों का पांच प्रकार भी समझाए हैं 41 में, पांच लक्षण बताए हैं, जो लोग भोगों में आसक्त रहते अव्यवसायी, ऐसे लोग जो सकाम कर्म करते हैं, जो यह श्लोक जो है 44, यह श्लोक ये तीनों श्लोक 42, 43, 44 ये तीनों श्लोक सकाम कर्म की चर्चा करते हैं। इसमें 44 नंबर का श्लोक अंतिम श्लोक है जो आज हम चर्चा करेंगे, ये सकाम कर्म का अंतिम श्लोक है। पर वो तीनों श्लोक किस प्रकार से ये लोग क्यों असकाम कर्म करते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, यह बात भगवान ने कहा बताई है 41 में ही बताई है। बहुत ध्यान से इट्स यू हैव टू बी वेरी मच रिसेप्टिव, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है, बट यू हैव टू मेंटेन द फ्लो। आई टेक अ लॉट ऑफ ट्रबल टू अंडरस्टैंड दिस, सो वी ऑल हैव टू टेक दैट मच ट्रबल बिकॉज इट्स वेरी मच इंटरेस्टिंग, बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आप थोड़ा अटेंटिव रहने का प्रयास कीजिए, मैं भी अटेंटिवली बोलने का प्रयास करता हूँ। सो देखिए 41 में भगवान ने सकाम कर्मी जो अव्यवसायी है, जो ठीक से व्यवसाय नहीं कर पाते हैं, हमने कहा था ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो व्यवसाय करने के लिए प्राप्त हुआ, वो जो ठीक से व्यवसाय नहीं कर पाते वो अव्यवसायी है, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट है, मतलब डिवाइडेड है। व्यवसाय क्या है? कृष्ण भावना में स्थिर होना, कृष्णा कॉन्शियस होना। भगवान यदि हम कृष्ण भावना में स्थिर हो गए तभी उपदेश समझेंगे, भगवान क्या बोल रहे हैं भगवत गीता में वो पता तभी होगा जब हम उस कृष्ण भावना में स्थिर हो जाएंगे। और स्थिर नहीं होगे तो भगवत गीता भागवत कुछ नहीं समझेंगे। इसलिए स्थिर हो जाइए, मतलब पहले अपना बिजनेस ठीक से कीजिए। और ये मनुष्य शरीर का बिजनेस एक ही महत्व का है, वो है भगवान कृष्ण के उपदेशों का पालन करना, कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावना में स्थिर होके भगवान के उपदेशों का पालन करते हुए अपने कर्मों को करना। तो इस प्रकार से यहाँ 5 वर्णन किए थे, अविपश्यति, अविपश्चित, है ना। देखिए 41 श्लोक, क्योंकि यह पूरा ये 41 श्लोक आगे के 3 श्लोकों को सपोर्ट करता है, 42, 43, 44, विशेषकर 44 को जो आज का श्लोक है। क्या कहते हैं? अविपश्चित, और एक्चुअली विपश्चित का अर्थ होता है सूक्ष्मदर्शी, या जो सूक्ष्मदर्शी अर्थात जो बहुत बुद्धिमान होते हैं, अविपश्चित अर्थात ये लोग बुद्धिहीन होते हैं, अव्यवसायी जो होते हैं, जो मनुष्य शरीर में आने के बाद जो मुख्य व्यवसाय करना है वो नहीं जानते, अव्यवसायी होते हैं, वो क्या है? अविपश्चित मतलब बुद्धिहीन होते हैं, उनके पास बुद्धि नहीं रहती है। परंतु भगवद गीता का उद्देश्य क्या है? भगवद गीता का उद्देश्य है सारे मनुष्य समाज को बुद्धिमान बनाना है, किसी को डल बनाने का उद्देश्य नहीं है भगवद गीता का। भगवद गीता चाहती है सारे संसार को बुद्धिमान बनाए, है कि नहीं? बुद्धिमान बनाना चाहती है भगवद गीता सारे संसार को। तो जो बुद्धिमान है वह समझता है कि पृथ्वी के अथवा स्वर्ग के भोग तो क्या है, क्षणभंगुर है, क्षणिक है, बट थोड़े समय के लिए है, बाद में तो खत्म हो जाएगा सब। तो इन सब बातों की चर्चा भगवान ने की, उसमें बताया कि अविपश्चित ये लोग कैसे होते हैं, बुद्धिहीन होते हैं, और ये लोग भोगों में आसक्त रहते हैं। नित्य क्या होता है? दे जस्ट वॉन्ट टू एंजॉय, एंजॉय एंड एंजॉय, दैट्स इट। दे जस्ट वॉन्ट टू एंजॉय मतलब भोग भोगना चाहते हैं। इस जो आज का श्लोक है उसका पहला ही शब्द क्या है? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। इसका अर्थ 41 में भगवान ने इसकी विस्तृत व्याख्या की है कि ये लोग क्या होते हैं? भोग ही भोगना चाहते हैं। दैट इज द ओनली इंटेंशन ऑफ लाइफ, गोल ऑफ लाइफ, भोगना। पर वो बुद्धिमान है क्या? क्योंकि वो केवल भोग ही भोगते हैं, परंतु भगवद गीता का उद्देश्य है कि सारे संसार को बुद्धिमान बनाना। तो सारे संसार को यदि बुद्धिमान बनाना है तो वो संसार के लिस्ट में ये लोग नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इनकी बुद्धि विभाजित है, इंटेलिजेंस इज डिवाइडेड, पूरी बुद्धि विभाजित हो चुकी है। तो इस प्रकार से फिर भगवान उनकी व्याख्या करते हुए कहते, वेदवाद रतः, वेदवाद वाले हैं, अर्थात वेदों के शब्द जो वाणी है अलंकारिक भाषा उसके प्रति रत अनुरक्त रहते हैं, अर्थात वे लोग जो वेदों के शब्दों को वेदों के शब्दों से अत्यंत हर्षित होते हैं। फिर भगवान ने तीसरा बात इनके बारे में बताई है, तीसरी बात की चर्चा की, नान्यन्दस्ति इति वादिनः, इंद्रिय तृप्ति से बढ़कर और कुछ भी नहीं ऐसा ये समझते हैं। फिर चौथी बात बताई, काम आत्मा, काम आत्मा, काम अर्थात भोगों की कामना और आत्मा अर्थात अपना स्वरूप, यानी भोगों को ही अपना स्वरूप मानते हैं, ऐसे ये लोग होते हैं। और पांचवा वो बताए स्वर्ग पर, स्वर्ग में भौतिक जगत के उच्च लोग जहां पर इंद्रिय तृप्ति का, जहां पर इंद्रिय तृप्ति की उच्च व्यवस्था होती है, यानी भौतिक संसार में पूरा इंजॉय जो करते हैं, पर वो सोचते कि नहीं मुझे बहुत ज्यादा अच्छे से इंजॉय करना है, तो ये स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहां भौतिक चीजें जो है बहुत अच्छी से तरह से उपलब्ध है, बेस्ट क्वालिटी का भोग करने के लिए जो भी संसाधन वहां पे है वो टॉप मोस्ट क्वालिटी के हैं, तो वहां जाके और ज्यादा अच्छा भोग कर सकते हैं। ये लोग उसके लिए आतुर रहते हैं, इसलिए भोगों की अलंकारिक भाषा, वेदों की अलंकारिक भाषाओं के प्रति आकर्षित होते हैं। और फिर भगवान ने वेदवाणी की लक्षण भी बताया, किस ये जो वेदवाणी जिसकी ओर ये आकर्षित होते वो क्या है, वो कैसी है अलंकारिक भाषा, उसका वर्णन किए हैं, पुष्पिताम यामिमाम पुष्पिताम, पुष्प की तरह है, इसकी सारी चर्चा हमारी उस दिन हो चुकी है, इसलिए मैं केवल आपको स्मरण करवाना चाहता हूँ। पुष्प और फल की हमने तुलना की थी, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पूरे वेद रूपी कल्प वृक्ष जो है, वेदों का वेद एक वृक्ष है, कौन सा वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, ये कल्प वृक्ष रूपी वेद का फल क्या है, श्रीमद् भागवतम है, वो फल है, तो फल फूल से ज्यादा टेस्टी है, रस है उसमें, शरीर के लिए अच्छा है, जैसे किसी पेड़ का फल जो टेस्टी होता है उसका फूल टेस्टी नहीं होता है, उसका फूल खा के देखेंगे तुरंत थूक देंगे, थू थू कड़वा लगेगा, आम का रस कितना बढ़िया है, आनंद आता है रस खाते वक्त, पर वही आम का फूल खाने के लिए कहे कोई तो कड़वा लगता है। तो इसी प्रकार से अलंकारिक भाषा जो है वो फूल की तरह है, दूर से ठीक है सब ठीक है, परंतु वास्तव में अपने शरीर को अपने आत्मा को रिलीफ देना चाहते हैं, संतुष्ट करना चाहते हैं, तो फल खाना पड़ेगा, वो फल क्या है, श्रीमद् भागवतम। तो इस प्रकार से फिर आगे की जन्म कर्म फल प्रदान इस श्लोक में कहा गया है 42 में, क्रिया विशेष बहुलाम, और इस प्रकार से 42-43 का वर्णन यही है कि ये लोग कैसे होते हैं और वो वेदवाणी की तरफ किस प्रकार से आकर्षित होते हैं और वेदवाणी में क्या है। ये सारी बातें जो है सकाम कर्मी के विषय में बताई गई है, सकाम कर्मी जो कामातुर है और काम कर्म कर रहा है, सकाम कर्म। यह श्लोक जो है ये सीरीज में का अंतिम श्लोक है जिसमें भगवान और एक बार सकाम भाव का वर्णन करते हैं। इसके आगे का जो श्लोक है वहां पे भगवान थोड़ा सा निष्काम भाव की शुरुआत करते हैं, बताते हैं त्रैगुणी विषयात वेदांत किस प्रकार से त्रिगुणों से, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहुत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। इस श्लोक में समाधि का अर्थ है, समाधि शब्द आया है, समाधि अर्थात समाधि का एक्चुअल एज इट इज शब्दशः अर्थ होता है फिक्स्ड मन, माइंड, मन स्थिर, मन एकाग्र, मन समाधि अर्थात एकाग्र मन या मन की एकाग्रता कभी होती है, मन कभी एकाग्र होता है, कोई बोले हम समाधि लगा के बैठ गए, समाधिस्थ हो गए, क्या कर रहे हैं, तो बहुत कोई एक लाइट सामने लगाया है और लाइट की तरफ देखते 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 समाधिस्थ हो गए, समाधिस्थ हो गए कि सो गए, तो सोने में मन की एकाग्रता होती है क्या, कोई बता सकते? सोना है ना मन की एकाग्रता है क्या? बहुत से लोग इस प्रकार से बताते हैं कि यह एक ऑब्जेक्ट है, उसके तरफ देखिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ध्यान लगाइए, ये कीजिए, वो कीजिए, पलाना लिखा, और ये करते करते नींद लग जाती है। या नींद नहीं भी लगे तो भी मन अनेक विचारों में इन्वॉल्व हो जाता है, इसको समाधि नहीं कहते हैं। पर शास्त्र में समाधि का शब्दशः अर्थ है मन की एकाग्रता। मुझे एक बात बताइए, किसी भी प्रकार की यदि समाधि कोई लेते हैं, वह समाधि जिसके ओर ध्यान करके लेते हैं, क्या वो वस्तु या वो विषय या वो व्यक्ति स्थिर है? यह प्रश्न पूछना चाहिए। बहुत बड़े ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हैं, या कोई अनेक विषयों का ध्यान करते हैं, आजकल तो कोई व्यक्ति का भी ध्यान कर लेते हैं, वो भगवान है करके बोल देते हैं, उन्हीं का ध्यान करो, तो वो व्यक्ति या वो विषय, क्या वो व्यक्ति या विषय स्थिर है? क्या वो तीनों गुणों से प्रभावित नहीं है जिसका हम ध्यान कर रहे हैं? इस संसार में जो कुछ भी उपलब्ध है, जो कुछ भी बनाया गया है या बन गया है, वो सब कुछ तीनों गुणों से प्रभावित है, ये इस बात की गारंटी है। जब ये सब कुछ तीनों गुणों से प्रभावित है तो उसका कैसे चिंतन करेंगे, उसकी ओर मन कैसे एकाग्र करेंगे? वो स्वयं ही तो चंचल है जिसकी ओर एकाग्र होना चाहते हैं। तो तीनों गुणों के ऊपर कौन है उसका ध्यान करना चाहिए, उसका ध्यान करेंगे तो ही मन स्थिर हो सकता है, नहीं तो मन तो बंदर है, वो एक डाली से दूसरी डाली पे कूदते रहता है। आप एक जगह पे भी हम बैठे तो भी मन एक जगह पे नहीं बैठता है, इधर उधर जंप मारते रहता है, तो उसको, क्योंकि वो आकर्षण, ये मन का एक स्वभाव है, चंचलता मन का एक स्वभाव है, वो आकर्षित होता है। किसकी ओर आकर्षित होता है? प्रकृति की ओर, जो दिखता है। इसलिए मन को भगवान दिखाइए, मन को महामंत्र दिखाइए, सुनाइए, उसको देखना है भगवान को दिखाइए, अर्च्य विग्रह के पास जाके, सामने जाके दर्शन कीजिए, क्योंकि ये देखने की जब मन को आदत लग जाएगी तो बाहर का देखना उसका बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए समाधि इसको नहीं कहते हैं, प्रभुपाद जी वर्णन कर किए हैं, उसका भी चर्चा करेंगे हम। भगवान ने 2.5 दूसरे अध्याय के 55वां श्लोक से लेकर तो 72वें श्लोक तक समाधि का अर्थ समझाया है, 55 से लेके 72 तक समाधि का अर्थ बताया है। वास्तव में समाधि अर्थात आत्मा के बारे में समझने के लिए ध्यानस्थ होना, आत्मा क्या है, मैं कौन हूं, यह बात समझने के लिए ध्यानस्थ होना अर्थात समाधि। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या कर रहा हूं, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, भगवान कौन है, इन बातों को समझना, ध्यान करके समझना, ध्यान लगाना, उसी को समाधि कहते हैं। दूसरे लोग दूसरी व्याख्या करते हैं, जो आत्मज्ञानी होते हैं वो समाधि, उसी को आत्मज्ञान को प्राप्त करने को ही समाधि कहते हैं। आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान दो एक वाक्य में बोल सकते हैं, आत्मा क्या है, आत्मज्ञान अर्थात आत्मा का ज्ञान, तो आत्मा क्या है? हो गया, आत्मा भगवान का अंश है और इसका भगवान के साथ संबंध है, हो गई समाधि। इसके ऊपर ध्यान लगाइए कि मैं भगवान का अंश हूं और भगवान का मेरे साथ, मेरा भगवान के साथ कुछ तो भी संबंध है, जो भी है मैं दृढ़ करना चाहता हूं उस संबंध, उसी को उसी भाव को समाधि कहते हैं। तो भगवान ने और इसका और विस्तारित वर्णन छठवें अध्याय में भी है, बहुत सी जगह पे समाधि क्या है, समाधि के बारे में भगवान ने सिक्स चैप्टर छठवें अध्याय में बहुत अच्छे से बताया है समाधि क्या है, उसके लिए हम जब चर्चा करेंगे। तो यहां पे कहे भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता ना, ये लोग जिनकी चर्चा अभी तक हम करते आ रहे हैं, कौन लोग, हा? जो अल्पज्ञ है, जो कामों में लिप्त है, सकाम कर्मी है, जो बुद्धिहीन है, जो अव्यवसायी है, इतने सारे शब्द अभी तक भगवान ने बोले। अब उन्हीं के बारे में आगे और बोलते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहुत चेतसाम। तो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, शरीर का आराम, शरीर का आराम, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, शरीर का आराम, मान प्रतिष्ठा, और नाम करने की, मेरा नाम प्रसिद्ध हो जाए, नाम कमाना, नाम कमाना बोलते हैं, नाम कमाइए, तो संसार में अपना नाम कमाने की लालसा, इन सब बातों से जो सुख प्राप्त होता है उसको भोग कहते हैं। किसको कहते हैं? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, शरीर का आराम, मान प्रतिष्ठा और संसार में अपना नाम कमाना, ये जो सब सारे सुख जो होते हैं, इससे जो कुछ भी सुख प्राप्त होते हैं उसको भोग कहते हैं। अब शब्द अर्थात, जैसे कि भगवान ने इस श्लोकों में कहा है, अलंकारिक भाषा या जो बहुत अच्छा लगता है, वो मन का जो रंजन करता है, मनोरंजन, मनोरंजन करने वाले शब्द जिससे मन डोलता रहा हा? क्या सुंदर गाना है, सारी संसार उस पे नाच रही है, गाने पे, आप सोचिए शब्दों पे पूरा संसार नाच रहा है, संसार ने नाचना चाहिए भगवान की उंगलियों पे, लेकिन संसार नाच रहा है गानों पे, और गाने कैसे हैं उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आप सोच सकते हैं किस प्रकार के भयंकर गाने संसार में शब्द का उपयोग किया जा रहा है, किस प्रकार से युवक लोगों को भ्रष्ट और फ्रस्ट कर किया जा रहा है, सबसे ज्यादा आज संसार में भ्रष्ट और फ्रस्ट कोई होगा तो वो यंग जनरेशन है, क्योंकि उनको इतने अलंकारिक शब्द सुनाए दिए जा रहे हैं, वो इतने अलंकारिक शब्द सुन रहे हैं कि दूसरे शब्द सुनने के लिए तैयार ही नहीं। किसी एक मित्र के यहां हम गए, उनके उनका लड़का है 14-15 साल का लड़का होगा, और हम गए और दूसरे रूम में उसका इतना जोर जोर से गाना चल रहा था, कोई फॉरेन गाना था, विदेशी गाना इंग्लिश में, और ऐसा गाना था जैसे मैं समझा, जाते से मैं समझा कि अंदर कोई बड़ा भयानक झगड़ा कर रहा है। मैं बोला तुरंत जाके पहला झगड़ा उसको निपटाओ, क्या चल रहा है, उसको म्यूजिक नहीं था, चिल्ला ही रहे थे, ऐसे शब्द, शब्दों में शक्ति होती है, ये शब्द या तो हमको बनाते हैं या हमको, उसका सीधा प्रभाव ब्रेन पे, माइंड पे होता है, मन, निगेटिव एनर्जी भी होती है उसमें, पॉजिटिव तो होती है, तो हमने एक्सपीरियंस किया है, संसार निगेटिव एनर्जी को एक्सपीरियंस करना चाहता है, भक्त पॉजिटिव, शब्द की जो शक्ति है विशेष शक्ति, उस शक्ति का अनुभव भक्त लेते हैं, लेकिन तामसिक शक्ति दूसरे लोग लेते हैं। तो यह बड़ा भयंकर है, भयंकर। और इस प्रकार के भाषा या शब्दों के नियंत्रण में जो आ गए हैं प्रभु जी, उनका तो जीवन ध्वस्त हो गया। ध्यान रखिए, आप सोचिए, देखिए, 24 आवर्स कान में लगा के लोग सुनते हैं, ऐसे शब्द सुनते हैं कि वो सुनने के पश्चात किसी दूसरे के साथ वो संबंध रखते ही नहीं, जरूरत ही नहीं है किसी की, किसी की जरूरत नहीं। मेरा वो क्या कहते हैं उसको, हैंड फ्री, बस वो और मैं, दोनों का ही रिलेशन, बस देयर इज नो थर्ड पर्सन, तीसरा व्यक्ति, क्योंकि उसमें शब्द ऐसे सुने दिए जा रहे हैं जो शब्द इनको, आपने कभी वो देखा सपेरा, वो सपेरा बीन बजाता है, वो जो नाग होता है इतना पॉइजनस और इतना पावरफुल होता है, बड़ा शक्तिशाली है, डर जाते हैं लोग, दूर से दिखे तो भाग जाते हैं। लेकिन सपेरा क्या करता है, ऐसी ट्यून बजाता है, इतनी बढ़िया ट्यून बजाता है कि इतना बड़ा सपेरा वहीं पे धुंधी उसके अंदर मस्ती चढ़ जाती, धुंध हो जाता है और डोलने लगता है। और फिर सपेरा क्या करता है, जाल में फंसा देता है, पकड़ लेता है कटाक से और टोकरी में बंद कर देता है। ये गाने जो हमको सुनाए दिए जा रहे सारे सपेरे हैं, ये सारे हमारे सामने ट्यून बजा रहे, ट्यू ट्यू ट्यू, और बराबर हमको वो टोकरी में बंद कर दे रहे माया के। कभी हरे कृष्ण महामंत्र मुख में आएगा ही नहीं, टोकरी में बंद हो जाएंगे माया रूपी। इसलिए भगवान कह रहे भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, ये लोग भोगी होते हैं। भोग मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो शब्दों के चंगुल में मत फंसिए, बड़े भयंकर शब्द होते हैं ये। दूसरा स्पर्श, ये तो सारा संसार अनेकों जन्मों से इस चक्कर में अनेकों जीव प्रताड़ित हो रहे हैं, और ये भी, ये स्पर्श भी एक ऐसा भोग है ये व्यक्ति को अंधा बना देता है। इसके पहले हमने चर्चा किया था, अंधा बना देता, व्यक्ति ही अपना सब कुछ भूल जाता है ना, उसको कुछ मान सम्मान या प्रतिष्ठा तो छोड़िए बहुत दूर की बात है, ना उसको कोई भय रहती है, ना कुछ उसको लज्जा रहती है। कामातुराणाम न भयम न लज्जा। प्रभुपाद जी हाथी का उदाहरण देते हैं बहुत बार, इतना शक्तिशाली है हाथी की, जंगल का राजा सिंह या टाइगर जो भी है, इन सबको एक आवाज हाथी है करता है तो सब भाग जाते हैं, सारे जंगल के जितने भी हिंस्त्र पशु है भाग जाते हैं, वो सब, वो हाथी बता देता है कि मैं आ रहा हूं, यहां से सब भाग जाओ चिल्ला के, इतना हाथी का पावर है। ये हाथी को पकड़ते हैं ये लोग, महावत वगैरह कैसे पकड़ते हैं, बहुत बड़ा गड्ढा करते हैं, लेकिन हाथी चतुर है, गड्ढे में नहीं उतरता है, उसके अपोजिट साइड में हाथीनी को खड़ा कर देते हैं। जब ये हाथी अपोजिट साइड के हाथीनी को देखता है तो ये स्पर्श के लिए लालायित होता है और दौड़ते, सोचता ही नहीं कुछ, और उसकी ओर दौड़ते जाता है, जैसे ही चार कदम आगे जाता है गड्ढे में गिर जाता है, इतना बड़ा हाथी। केवल भोग के चक्कर में, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, भोग। इसी प्रकार से आज हम जो जो कुछ भी संसार में देख रहे, इतनी घटनाएं हो रही है, हाँ, ये सब भोग के कारण हो रही है। क्योंकि जो मन है, जो भगवान बुद्धि योग देना चाहते हैं, भगवान कहते हैं ये बुद्धि योग है इसको लो, हम उसको छोड़ के बाकी सब ले रहे हैं। जब हम बाकी सब लेंगे तो भोग की इच्छाएं होगी, क्योंकि संसार में तो सब यही कुछ है। इसको नियंत्रित करना है तो बुद्धि योग प्राप्त कर स्वीकार करना पड़ेगा। बुद्धि जो है हमारी सात्विक होनी चाहिए, दूसरा कोई इलाज नहीं। कितने भी इलाज कीजिए, कितने भी कायदे बदलिए, कुछ भी कीजिए, जब तक मन नहीं बदलता है, जब तक कॉन्शियसनेस नहीं बदलती है, तब तक सब कुछ जीरो है। तो इस प्रकार से शब्द स्पर्श रूप पतिंगा, रूपा जी के उदाहरण ये सब। पतिंगा क्या करता है, उसको वो जो ज्योत है फायर अग्नि, उसको बड़ी सुंदर लगती है। कितनी सुंदर है, और बहुत बढ़िया डांस करते करते आनंदित होके उत्साहित होके वो अग्नि के पास जाता है, सोचता है कितना सुंदर रूप है, इस रूप को मैं स्पर्श करूंगा, और जाता है क्या हो जाता है, जल जाता है, ध्वस्त हो जाता है। ये जो है आकर्षण रूप के प्रति। यदि रूप के प्रति आकर्षित होना ही है तो बहुत सुंदर राधा गिरिधारी जी हैं, उनके प्रति आकर्षित हो जाए, उनकी इतना सुंदर कोई है नहीं, उनके प्रति आकर्षण यदि हो जाए तो आचार्यगण कहते हैं कि यदि आपने एक बार इनको देख लिया, वास्तव में देख लिया, भगवान कहते हैं जो मुझे यो में वेत्ति तत्वतः, मतलब जो मुझे तत्व से देख लिया, तत्व से जान गया, वो महान है, बड़ा दुर्लभ है। तो भगवान का दर्शन भी करना है तो तत्व से यदि हमने भगवान को देख लिया, बड़े तत्व से, ऐसा नहीं गया हरे कृष्ण सर पटक के आ गया, ऐसा नहीं, तत्व से भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं तो भगवान को तत्व से जानिए, भगवान कौन है, कैसे खड़े हैं, क्या है उनका भाव। उस भाव से जब हम भगवान का एक बार दर्शन करेंगे उस रूप का, दूसरे सारे रूप हमारे सामने, उनके सामने जीरो है, भगवान के रूप के सामने कभी इच्छा नहीं होगी मन में दूसरे रूप का दर्शन करने की। और इस प्रकार से पतिंगे के जैसे हम फंस नहीं जाएंगे, पतिंगा जैसे जल गए। और फिर है रस, रस अर्थात टेस्ट, जीवा की स्वाद, स्वाद का भी उदाहरण कई बार प्रभुपाद जी देते, हमने भी चर्चा की है, फूल में का जो मकरंद निकालता है, क्या कहते हैं उसको, बार बार भूलता हूं मैं, नहीं नहीं वो कीड़े को क्या कहते हैं, भौरा, भौरा भौरा जो होता है उसको क्या है, बड़ा टेस्ट आता है उसको मकरंद को निकालने के लिए, मध को निकालने के लिए। एक बहुत सुंदर कमल पुष्प पे बैठता है और बढ़िया मकरंद, टेस्ट कितनी जोरदार आ रही है प्रभु जी, वेरी टेस्टी, बैठ गया सुबह उसको खाने के लिए, मध को चखने के लिए, सुबह से खाने बैठ गया, सुबह हो गई तो भी चल रहा है उसका, दोपहर हो गई, चार पांच बज गए, सनसेट हो रहा है, उसका ध्यान ही नहीं, खाने में इतना मग्न है। सनसेट के पश्चात कमल का फूल बंद हो जाता है, उसका ध्यान ही नहीं, खाने में लगा है, और सूर्यास्त हो गया और कमल का फूल बंद हो गया। भोग में इतने लगे खाना 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 खाना, खाना। इतना 5 इंच का पेट है लेकिन भरता ही नहीं, इतना छोटा खड्डा है लेकिन तृप्त ही नहीं होता है। यही तो किमया है, यही तो माया है। तो इस प्रकार से ये भौरा उसी के भोग, भोग के लिए, तो पता ही नहीं चला कब समय निकल गया और एकदम से उम्र निकल गई, और अब पता चल रहा है कि हमने तो खाने पीने सोने में ही समय निकाल दिया। भौरे के जैसी बात है, भौरा फंस गया, अंदर बंद हो गया, मृत्यु आ गई। फिर है गंध, गंध अर्थात सुगंध के लिए लाभायित, अच्छा सुगंध, इसको वासनाएं भी कहते हैं। हिरण होती है, हिरण वो जब सूंघती है या सुंघता है, जो भी आप कहें, जब वो सुंघता है उसको सुगंध आता है तो ऐसा भागता है ना पूरे डेजर्ट में, भयंकर स्पीड से भागता है सुगंध की दिशा में, सैकड़ों किलोमीटर भागता है, पर फिर भी उसको वस्तु वो दिखती नहीं है, सुगंध आता है, सुगंध 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 के चक्र में भागते रहता है, भागते रहता है। और सुगंध कहां से आता है? उसी के पेट में से आता है, उसी के पेट में कस्तूरी है। लेकिन वो सुगंध के प्रति इतना आसक्त है, इतना लालायित है कि वो चाहिए और चाहिए और चाहिए, भागो 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 भागो, और चाहिए इसे, ढूंढो ये सुगंध, और ढूंढो ढूंढो ढूंढो। तो ये बड़ी गड़बड़ी है। वो मिलता नहीं, अंत में इतना फ्रस्ट हो जाता है संसार से भाग भाग के, अंतिम समय आ जाता है। तो इस प्रकार से भोगों के लिए पदार्थ, इसको भोग कहते हैं। जैसे इसमें कहा गया भोग ऐश्वर्य, ये जो पांच चीजें हैं, इसके अलावा भी शरीर का आराम, मान सम्मान, नाम वगैरह कमाना, ये सब बातें भोग में आती। दूसरी बात भगवान कहते हैं इन लोगों के बारे में, वो है ऐश्वर्य। तो भोगों के लिए पदार्थ, रुपए पैसे, मकान आदि का संग्रह करना, यह संग्रह किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? ऐश्वर्य कहते हैं। मतलब ये जो भोग है, इसको भोगने के लिए जो पदार्थों का संग्रह किया जाता है, उसको ऐश्वर्य कहते हैं। तो हम ऐश्वर्यशाली होना चाहेंगे? देखिए, भगवान यहां पे जिनकी बात कर रहे हैं वो क्या है? सकाम कर्मी है, बुद्धिहीन है, अल्पज्ञ है, या अज्ञानी है, अल्पज्ञ भी नहीं अज्ञानी है। तो उनके बारे में बता रहे हैं ये लोग, भोगों में भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम आसक्त है, भोग में आ सकते हैं, भोग ये है, ये भोगों को भोगने के लिए जो ऐश्वर्य है वो क्या है? भोगों को भोगने के लिए जो पदार्थ चाहिए उसको ऐश्वर्य कहते हैं। वो पदार्थ क्या है? रुपए पैसे, धन, मकान, ये सब, इसको ऐश्वर्य कहते हैं। तो प्रश्न ये है कि ये सब ऐश्वर्य हमने प्राप्त करना चाहिए कि नहीं चाहिए? भोग ऐश्वर्य, भोग वो बातें हैं जो हमने अभी चर्चा की है, और ऐश्वर्य यह है हमको क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए, पदार्थ भी नहीं चाहिए, भूख भी नहीं लगती हमको, खाने को भी नहीं चाहिए, अभी प्रसाद आएगा नहीं चाहिए। आज प्रसाद नहीं आएगा बोले तो ठीक है, जरूरत क्या है? सबसे बड़ी जरूरत क्या है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम। मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? अपने आप को समझना, अर्थात आत्मा को समझना, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये आत्मा भगवान कौन है, भगवान के साथ संबंध क्या है, एक ही बात, दूसरी तीसरी बात नहीं है पूरी भगवद गीता में। आप बोलेंगे अभी कोई नई बात बताएंगे, एक ही बात बताएंगे थ्रू आउट, भगवान एक ही बात बताएंगे, आत्मा को समझो, भगवान को समझो, दोनों के बीच के संबंध को समझो, हो गया काम। और ये सारी जो समझने की बात है, यह जो सारी समझने की विधि है, वो केवल मनुष्य शरीर में ही समझ सकते हैं। That's it. तो मनुष्य शरीर में यही समझना है, और यही सबसे बड़ी जरूरत है। ये जरूरत को पूर्ण करने के लिए जो कुछ भी ऐश्वर्य या पदार्थों को उपयोग में ला सकते हैं, लाइए। इस जरूरत को पूर्ण करने के लिए जिस किसी भी चीज को, वस्तु को, पदार्थ को उपयोग में ला सकते हैं, उसको उपयोग में लाइए। इनका प्रवचन जोर से बढ़ गया, थोड़ा शांति बोलिए ना, नींद टूट जाती है। तो इस प्रकार से ये जरूरत पूरा करने के लिए पदार्थों का उपयोग, उसी को कहते हैं वास्तविक उपयोग। अदरवाइज इसके अलावा जो भी कुछ होता है वो मिसयूज है, दुरुपयोग है या अब्यूज है, एकदम गैर वापर है, उसका गलत फायदा उठाना उसको कहते हैं हिंदी में, गलत फायदा उठा रहे हैं। इसके अलावा अर्थात जो मुख्य जरूरत है इसके व्यतिरिक्त जो कुछ भी करते हैं वो ठीक नहीं है। इसको केंद्र में रख के, मुख्य जरूरत को केंद्र में रख के पदार्थों को एकत्रित कीजिए। प्रभुपाद जी को किसी ने प्रश्न पूछा था, आप तो प्लेन में घूमते हैं आप तो कहीं भी जाते हैं, कार में घूमते हैं, प्लेन में जाते हैं, तो प्रभुपाद जी क्या उत्तर दिए, ये सब कृष्ण का ही तो है और मैं उनकी सेवा कर रहा हूं। कृष्ण की सेवा के लिए इन सब बातों का उपयोग लाना या इन सब बातों का उपयोग करना ही सबसे बढ़िया उपयोग करना है। उस वस्तु का वास्तविक उपयोग करना अर्थात कृष्ण की सेवा में उसका उपयोग करना है, इससे बेटर यूज उस वस्तु का कहीं पे भी हो नहीं सकता, वही सबसे अच्छा उपयोग है। तो इस प्रकार से हमने सोचना चाहिए कि क्या करना है। भगवान के लिए जो मुख्य जरूरत है उसके लिए ऐश्वर्य भोग ठीक है, पर भगवान के लिए भोग लगाना चाहिए। भगवान को भगवान कहते हैं कि भोक्ता राम यज्ञ तपसा, मैं ही सारे भोग भोगने वाला हूँ है कि नहीं। तो भगवान को ही भोग दे दीजिए, हम भगवान के केवल दास बने रहेंगे। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये सब ऐश्वर्यों में सब आसक्त रहते हैं, उनको भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम कहते हैं। ये लोग इतने प्रकार से प्रसक्ता नाम, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, पूरी तरह से लिप्त आसक्त रहते हैं। जैसे एखादे मछली को पकड़ना है, पकड़ लेते हैं, जो मछली जब जाल में अटक जाती है, जाल फेंकते हैं और जाल में मछली अटक जाती है, कितना भी तड़पे वो जाल के बाहर नहीं आ सकता। इसी प्रकार से भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, ये लोग ये भोग और ऐश्वर्य के जाल में इस तरह फंस जाते हैं कि बाद में वो छटपटाते हैं निकलने के लिए, समय जाने के पश्चात छटपटाते हैं, जंप मारते हैं, अनेक प्रयास करते हैं पर कुछ काम नहीं करती है कोई भी बात। क्यों? क्योंकि वो काल रूपी जाल उनके ऊपर पड़ गया है, अभी सारा शरीर कमजोर हो गया है, सब कुछ स्वयं नहीं तो जाल, अब जाल में स्वयं ही तो चले गए, किसी ने बुलाया थोड़ी था, स्वयं चले गए जाल में, जा रहे थे तब बताया गया बहुत बार, अरे जाल में फंसो मत, ये जाल है, परंतु कोई समझा नहीं समझे तो फंसो। अब स्थिति आ रही है, अभी छटपटा रहे हैं जाल मछली के जैसा, उनको कहते आसक्त, जो समझते ही नहीं समझ सकते। तो भगवान कहते हैं तीसरे अध्याय के 39वें श्लोक में, भगवान क्या कहते हैं, आवृत्तम ज्ञानमेवेन। तब इन लोगों का मति आवृत्तम ज्ञानमेतेन, मतलब इनकी मति आवृत्त हो गई है अज्ञान से, ये जो ज्ञान है ये ढक गया है, मति आवृत्त हो गई है। किससे आवृत्त हो गई है? काम से। वो कहते हैं काम रूपी शत्रु द्वारा इनका ज्ञान ढक गया है, ये शत्रु है और शत्रु के द्वारा इनका ज्ञान ढक गया, इसकी चर्चा हमने पिछले समय की थी। इतने बड़े भयंकर शत्रु के जाल में फंसे हुए, काम रूपी शत्रु के जाल में फंसे हुए है, भोग रूपी शत्रु के बाद जाल में फंसे हुए, इनको अच्छा सही और गलत भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या सही है क्या गलत है ये भी नहीं समझ बता रहे हैं भक्त लोग हरे कृष्ण वाले आके, पर फिर भी एक बार हंस पक्षी ऊपर से उड़ के जा रहा था, बहुत सुंदर, नीचे उसने बगुले को देखा, बगुला क्या हिंदी में बगुला ही कहते हैं ना, बगुले को देखा तो थोड़ा नीचे आया और बगुले से बोला, अरे बगुला भाई मैं मानस सरोवर जा रहा हूं स्नान के लिए। कहा मानस सरोवर बड़ा शुद्ध है, साफ सुथरा है, बहुत अच्छा है, तुम वहां चलो, बहुत अच्छा पानी जल वगैरह सब मिलेगा बढ़िया। वो बगुला क्या कर रहा था, एक ऐसे ही सरी डबका टाइप होता है ना, तो उसमें सारा गंदगी रहता है, थोड़ा बहुत पॉट, थोड़ा बहुत पानी रहता है, चारों तरफ गंदगी फैला रहता है, वो गंदगी में ही वो फिश को ढूंढ रहा था मछली को खाने के लिए, और जो कुछ भी वहां सड़ा गला कीड़े बीड़े मिलते वो सब खा रहा था। तो हंस पक्षी बोले, अरे तुम चलो वहां पे, मैं मानस सरोवर जा रहा हूं, मेरे साथ चलो। बगुला बोले, अरे क्या मानस सरोवर जाओ, मुझे तो यहाँ पे बड़ा अच्छा सब कुछ मिल रहा है, आई एम हैप्पी, सब गंदगी है, सब कीड़े बीड़े मिल रहे हैं। वो कह रहा है कि मानस सरोवर चलो, बहुत सुंदर वातावरण है, बहुत दिव्य धाम है। वो कह रहा है कि बगुला प्रश्न पूछता है कि मानस सरोवर में आने से मुझे ये ऐसी सेम गंदगी मिलेगी वहां पे, ये कीड़े बीड़े सड़े गीड़े सब ये सब मिलेगा वहां पे। हंस बोलता है, ये सब वहां कैसे मिलेगा, इसकी क्या आवश्यकता, ये सब वहां पे नहीं मिलेगा ना, तो फिर ये जब नहीं मिलेगा तो मानस सरोवर में आके क्या लाभ। जीव को हम चर्चा करते हैं कई बार, बताते हैं कि प्रभु जी गोलोक धाम वृंदावन धाम मायापुर धाम बहुत सुंदर, भक्ति है ये है वो है, चाय मिलेगी क्या वहां पे कांदा विंदा का एखादा सिनेमा टीवी वगैरह है क्या रूम में, बीच में न्यूज देखने के लिए। वो हंस पक्षी बोल रहे हैं मानस सरोवर की बात, और ये बगुला बोल रहे हैं सब मिलेगा क्या वहां पे। ये इस प्रकार की मेंटालिटी इन लोगों की होती है, जो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम आसक्त रहते हैं, कितनी भी दिव्य वस्तु दिव्य कथा उनको समझाइए, दिव्य धाम की चर्चा कीजिए, दे विल नॉट अंडरस्टैंड, वहां पे ये सब गंदगी है क्या पूछते हैं, ये गंदगी हो तो हम वहां चलेंगे। तो इसलिए हमने इन सब बातों से बचना चाहिए। भक्तों का प्रयास रहता है कि सभी को हंस बनाए, हंस पक्षी का प्रयास है कि बगुले को भी मैं हंस बनाऊं, मेरे साथ मानस सरोवर ले जाऊं। भक्त हमेशा प्रयास करते हैं कि सभी भक्त बन जाए, तो सभी ने प्रयास करना चाहिए कि हमारे संपर्क में जो कोई भी आते हैं उन सबको भक्त बनाए, है ना। हरे
कृष्णा कृष्णा कृष्णा
तया प्रहुत चेतसाम, अगला शब्द है तया प्रहुत चेतसाम, वेदों की पुष्पिता वाणी के द्वारा चित्त का अपहरण किडनैप, अभी हम चर्चा किए शब्द तया प्रहुत चेतसा, मतलब चेतसा चित्त, चित्त का अपहृत, चित्त को किडनैप कर दिया, चित्त को किडनैप कर दिया, बोले तो देखिए कितनी बड़ी भयंकर बात, किसने किडनैप किया है, हाँ हो गए ईश्वर आसक्ति के कारण, आकर्षणों ने अनेकों प्रकार के आसक्तियों ने इस वाणी के द्वारा चित्त को अपवृत्त कर दिया है। किस प्रकार की वाणी है यहाँ पे, पुष्पिता वाणी। तो इसके पहले हमने इसकी सारी चर्चा की है पुष्पिता वाणी की, पर पुष्पिता वाणी अर्थात ऐसी वाणी जिसके प्रति हम आकर्षित तो हो जाते हैं पर वो आकर्षण भ्रमित कर देता है। अब वेदों की वाणी तो क्या, वेद तो भगवान की श्वास से निकले हैं, भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, अर्थात वो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान के बारे में जिज्ञासा होनी चाहिए ऐसा वेद कहते हैं। इसकी ओर हम आकर्षित न होके दूसरी जो भाषा वेदों में लिखी हुई है, जैसे हरिवंश पुराण का एक उदाहरण है, हरिवंश पुराण में कुछ अमुक कार्य करने से क्या प्राप्त होता है ऐसा कुछ बताया। हरिवंश पुराण कहते हैं कि वो अनुष्ठान करने से आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, वहां पे आपको विमान प्राप्त होगा और वो विमान में सारी एयर होस्टेस भरे हुए रहे। एयर होस्टेस अर्थात वो क्या होते हैं, वो स्वर्ग की अप्सरा। ऐसा हरिवंश पुराण के एक अध्याय में लिखा है। अब जो लोग भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम है वो क्या करेगा, वो वेदों में यह भी लिखा है कि कृष्ण का एक बार नाम लो तो आपको गोलोक धाम प्राप्त हो जाएगा, यह भी लिखा है और वेद में यह भी लिखा है। तो ये भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम वाला क्या करेगा, वो प्लेन में बैठेगा। तो इस प्रकार से इसलिए यहाँ पे कहा गया कि तया, ये लोग वो तया प्रवृत्त उन बातों से अपवृत्त हो जाते हैं, किडनैप हो जाते हैं, उनको किडनैप कर देते हैं। ऐसी अनेक बातें उसमें लिखी रहती है। सॉरी, 10,000 वर्षों तक इंद्र का जो भवन है ना, इंद्र का घर, इंद्र का पैलेस अमरावती है क्या, अमरावती नगरी में है वो, 10,000 वर्ष तक स्वर्ग के सारे भोग उनके पैलेस में आप कर सकते हैं, इंद्र के पैलेस में 10,000 ईयर्स तक, ऐसा लिखा है इसमें। तो इन सब बातों से कोई भी साधारण व्यक्ति अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि श्रेय और प्रेम दो बातें होती है। श्रेय का क्या अर्थ है और प्रेय का क्या अर्थ है, श्रेय अर्थात लॉन्ग टर्म गेन, प्रेय अर्थात शॉर्ट टर्म गेन। प्रेय शॉर्ट टर्म गेन अर्थात जो अभी तुरंत मिल जाए। एकादे बच्चे को 1,000 रुपए का नोट दिखाइए और एक चॉकलेट दिखाइए, ऐसे वो क्या प्रिफर करेगा, चॉकलेट, क्योंकि तुरंत खाने को मिलता है ना। 1,000 का नोट कब जाएंगे कब लेंगे, वो 1,000 रुपए से इतने चॉकलेट ले सकता है कि जब तक वो 25 साल का नहीं होता है तब तक उसको चलेगा। ये शॉर्ट टर्म जो गेन का जो सोचता है, अर्थात ये व्यक्ति अज्ञानी है, क्योंकि उसके बाद क्या, जो व्यक्ति इस प्रकार के स्वर्गीय सुख का सोचता है वो शॉर्ट टर्म है, प्रेय, उसको प्रेय कहते हैं। जब तक अकाउंट में पैसा है तब तक खूब इंजॉय करो प्रभु जी, पूरे संसार को 10 बार राउंड मार के आ जाओ, उसके बाद क्या, 10 बार स्वर्ग में घूम के आ जाओ ठीक है, जितना पुण्य कमाया सब, जब वो अकाउंट उसका खत्म हो जाएगा पुण्य का, बाद में तुरंत पृथ्वी पे कुछ भी बनना पड़ सकता है, कुछ भी पता नहीं क्या बनेगा। पर एक जगह ऐसी है जहां जाने के बाद श्रेय, वहां यदि पहुंच गए तो ये ऐसा खतरा नहीं है, कभी कभी सुअर बन जाए तो कभी कुत्ता बन जाए तो कभी मनुष्य बन जाए, पर एक बार उस जगह पहुंच गए तो ये सब बनने का खतरा नहीं है, धोखा नहीं है। परंतु इसको ही तो दिव्य दृष्टि कहते, दूर की सोच। तो जो दूर की सोच वाले लोग हैं वो इस प्रकार की वेदों की वाणी में फंसते नहीं, वो वेदों की दूसरी जो वाणी जो कहती है कि परमानेंट गेन, वहां पहुंच जाओ देर इज नो ट्रबल, कोई दुख नहीं है, कोई अकाउंट से 1 रुपया भी नहीं कटेगा आपका। जो है सब कमाया, जो भी कमाया ऐसे के ऐसे रहेगा, वहीं पे भी, वहां पे भी मिलेगा वो सब, कभी खत्म। अभी देखा नेहा अभिकरण आश्वस्ती, ये खत्म भी नहीं होता है, इतना भी किया है वो कभी खत्म नहीं होता है। प्रत्यवायो न विद्यते। तो इस प्रकार से यहाँ तया प्रभुत चेतसाम भोगी लोगों का सकाम कर्मी का वर्णन है, वो इस प्रकार से रहते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। यह व्यवसायात्मिका बुद्धि पहले भी हो चुकी है, फिर भगवान उसी की चर्चा कर रहे हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, उनका कृष्ण भावनामृत निश्चय स्थिर नहीं रहता है। उनकी बुद्धि क्या होती है, न विधीयते समाधो। इस प्रकार से उनकी बुद्धि क्या होती है, स्थिर नहीं रहती। ये तो सबसे बड़ी गड़बड़ है। कृष्ण भावनामृत में बुद्धि स्थिर होना तो सबसे महत्व की बात है, स्थिर नहीं होती है। कभी 64 माला, कभी एक माला। कृष्ण भावनामृत में बुद्धि स्थिर होती ही नहीं है। एक बार स्थिर होती है, एक बार जब स्थिर होती है तो वृंदावन यात्रा, 64 माला जब, भागवतम का प्रवचन सब, और फिर 4-6 दिन हो गए, 7वें दिन बस हो गया, आज आराम। आज संडे का, आज का संडे घर में 10 बजे उठते हैं। फिर कोई दूसरा बोलता है कि अरे आज तो बहुत बढ़िया नया सिनेमा आया है, फलाना ढिकाना नया सिनेमा आया है। अच्छा चलो एक बार इतना किया, 7-8 दिन से इतना जब किया, धाम गया, इतना किया, अभी 2-4 बार सिनेमा देख लिया तो क्या फर्क। थोड़ा सिनेमा देख लेते हैं, थोड़ा ये कर लेते हैं, थोड़ा वो, थोड़ा शादियों की पार्टियां एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, व्यवसायात्मका बुद्धि समाधो न विधीयते। बुद्धि स्थिर नहीं रहती है कृष्ण भावनामृत। ये सब बातें जो सामाजिक बातें हैं वो करने का है, समाज में रह रहे करना तो चाहते हैं, करते कीजिए, लेकिन बुद्धि स्थिर कर दीजिए पहले। बुद्धि को स्थिर करके सब, बुद्धि को अस्थिर या अल्पज्ञ बन के कुछ भी कार्य मत कीजिए, पहले अपने बुद्धि को स्थिर कीजिए। संकल्प जो किया है उसको पूरा करके कीजिए सामाजिक का, कोई प्रॉब्लम नहीं। जाना है शादियों में, जाइए, आशीर्वाद दे के आइए। जो जब करता है उसके आशीर्वाद बहुत आवश्यक होते हैं, बाकी लोगों के आशीर्वाद इतने इफेक्टिव नहीं होते। तो आप जब करके जाइए, अपना संकल्प पूरा करके जाइए, उसको तोड़ मरोड़ के जाने से कोई लाभ नहीं होगा, ना आपको होगा, ना हमको, किसी को भी नहीं होगा, ना उनको होगा। तो लाभ है ना, सभी को लाभ होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहां कहा गया है कि उनकी बुद्धि कृष्ण भावनामृत में नहीं लगती है। भगवान ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो शास्त्र, साधु, गुरु, इनका सम्मान करना तो जानते हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। साधु सम्मान करना चाहिए, शास्त्र है आदर करना चाहिए, सुनना चाहिए, ये सब जानते हैं। ये भी जानते हैं कि ये सब बातें कल्याणकारी है। यह बातें कल्याणकारी, यह भी जानते हैं, परंतु हृदय में कामनाओं की दुर्बलता के कारण, हृदय में, हृदय दुर्बल है। पहले अध्याय में हमने इसकी चर्चा की है, हृदय दौर्बल्यम सबसे बड़ी बीमारी है। ये भगवान कहते तुम्हारा हृदय, तुम ये अंदर ऐसे कैसे आ गया, तुम्हारा इतना हृदय दुर्बल कैसे हो गया। तो हृदय दौर्बल्य, हृदय दुर्बल क्यों हो जाता है, ऐसा क्या घुस जाता है उसमें, कौन सा वायरस लग जाता है उसको, हार्ट को, जो दुर्बल हो जाता है। अंतकरण जिसको कहते हैं, वो दुर्बल हो, वीक हो जाता है। ऐसा कौन सा वायरस घुस जाता है, तो ये कहा गया कामनाओं के कारण हृदय दुर्बल हो जाता है। और ये जानते हुए भी कि शास्त्र जो कह रहे हैं, साधु जो कह रहे हैं, गुरु परंपरा जो कह रही है, वो कल्याणकारी है, उससे मेरा फायदा है, लाभ है, कल्याणकारी है, ये जानते हुए भी गड़बड़ कर देते हैं। ये गड़बड़ होती क्यों है, क्योंकि हृदय में कामना है, अनेक, एक नहीं, अनेक कामना है। और वही कामनाओं के कारण ये जो कुछ भी समझ गए हैं कि ये साधु शास्त्र जो है ये कल्याणकारी बात बता रहे हैं, ये समझ गए, लेकिन इन बातों को धारण नहीं कर सकते, कृष्ण कॉन्शियसनेस को धारण नहीं कर सकते, क्योंकि हृदय में दुर्बलता है, कामनाएं हैं। यह कामनाओं के कारण कृष्णा कॉन्शियस, कृष्ण भावना अमृत को, इस अमृत को धारण नहीं कर सकते। एक बार भगवान ने अक्रूर जी को भेजा युधिष्ठिर के पास। अक्रूर जी को बोला, जब महाराज पांडु का देहांत हो गया उसके पश्चात अक्रूर जी को भगवान ने कहा, उनको भेजा कि जाओ और युधिष्ठिर सॉरी धृतराष्ट्र को, धृतराष्ट्र महाराज को समझाओ कि अब जो पांडु पुत्र है, पांचों पांडव, वो सब आपके यहाँ रह रहे हैं, इनको ये दुर्योधन आदि प्रताड़ित करते रहते हैं, ऐसा मत कीजिए। और बहुत सारे उपदेश भगवान ने, कृष्ण ने अक्रूर जी के पास दिए। तो अक्रूर जी वहां पहुंचे और धृतराष्ट्र को बहुत समझाया, बहुत सुंदर भाषा में भगवान के उपदेश को उन्होंने बताया धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र ने सब समझ लिया और अक्रूर जी को कहा, धृतराष्ट्र को कहा, भगवान के, वो तो भगवान नहीं बोले पर वो कहे, श्री कृष्ण की जो उपदेश और जो वाणी है और जो उन्होंने कहा है वो एकदम आह्लाददायक है, तृप्ति कारक है, मेरा हृदय तृप्त हो गया सुन के। कौन कहा? धृतराष्ट्र। कितना सुंदर उपदेश है, कितनी सुंदर बातें कृष्ण ने आपके पास भेजी है, मेरा हृदय तृप्त हो गया। लेकिन क्या करूं, इन बातों को मैं धारण नहीं कर सकता हूं क्योंकि मेरे हृदय में कामनाएं हैं अपने पुत्रों के प्रति, दूजा भाव है मतलब पांडु पुत्रों के प्रति, और अपने पुत्रों के प्रति आसक्ति है। यह बहुत सुंदर कहा है उन्होंने कि मेरा हृदय तृप्त हो गया, इतने अच्छे अच्छे उपदेश दिए परंतु हृदय में कामनाएं हैं। ये उस तरह है जैसे आकाश में बिजली चमकती है, आकाश में जब बिजली चमकती है तो थोड़ी देर के लिए कितना अच्छा लगता है, कितना सुंदर दृश्य है, लेकिन अति सुंदर दृश्य है, बहुत सुंदर दृश्य है, कितनी देर के लिए, हाँ ऐसी बिजली हमारे हृदय में चमकती है। ये धृतराष्ट्र कहे अक्रूर को, बहुत सुंदर उदाहरण दिया। ये ऐसा केवल फ्लैश नहीं होना चाहिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस का फ्लैश बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा दिखता है, बहुत परफेक्ट है, बहुत तृप्त आह्लाददायक है, आनंद देने वाला है, तृप्त करने वाला है, सब कुछ है, कितने समय के लिए, फ्लैश, यह नहीं होना चाहिए। ये जो भगवान के उपदेश है, ये सब कुछ जो है ये हमने आत्मसात करना चाहिए, धारण करना चाहिए उसको जीवन भर के लिए, उसको धर लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं जो ये नहीं करते वो कभी समाधिस्थ नहीं हो सकते, उनका मन कभी भी भगवान में मेरे में नहीं लग सकता, इसका अर्थात अर्थ यह होता है। आप तात्पर्य पढ़िए ध्यान से, चार लाइन कही लेकिन प्रभुपाद जी ने समाधि का अर्थ बताया है। समाधि का अर्थ है स्थिर मन। जब मन में हृदय में इतनी कामनाएं हैं तो इतनी कामनाएं होने के कारण उपदेशों को मैं धारण ही नहीं कर सकता हूं, उपदेशों को धारण इसलिए नहीं कर सकता हूं, बहुत सारे विचार और कामनाएं मन में है, मन अस्थिर है। प्रभुपाद जी पहला ही शब्द कह रहे समाधि का अर्थ है स्थिर मन, पर हृदय में इतनी कामनाएं है कि मन स्थिर ही नहीं होता है, कैसे होगा? वैदिक शब्दकोश निरुक्त के अनुसार सम्यग अधियते अस्मिन्नात्मन तत्वयाथात्मयम्। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसको समाधि कहते हैं। आत्मा में क्या लगा है? आप आत्मा में अनेकों कामनाएं हैं, अर्थात आत्मा में है, अर्थात आत्मा को कवर कर दिए इस चेतना, कामना रूपी चेतना ने आत्मा को कवर कर दिया है। विचारो, आत्मा में ओरिजिनली कुछ नहीं है, कामना वगैरह तो प्योर है, भगवान का अंश। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त है उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं। इस प्रकार का मोह जो है, कौन सा मोह? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। हमने अभी चर्चा की कि ये जो ऐश्वर्य जो चाहिए उसका आधार मोह नहीं होना चाहिए, है ना? पदार्थ को एकत्रित करना है मोहित होके नहीं, कृष्ण भावना भावित होके पदार्थ को एकत्रित करके भगवान की सेवा में अपने कर्मों को लगाना है। तो प्रभुपाद जी यहां कहते हैं कि क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त है उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। ये सब झमेले में पड़ जाते हैं, जैसे हमने देखा बगुला मछली, और भवरा हाथी। ये प्रभुपाद जी ये कह रहे कि माया के चक्कर में फंस गए ये सब, और माया के चक्कर में पतन तो होता है, मृत्यु भी हो जाती है। पतन भी होता है, पतन के साथ साथ कभी मृत्यु कब आ जाती है पता नहीं चलता है। प्रभुपाद जी कह रहे इतना भयानक पतन होता है कि वो मृत्यु के पश्चात फिर जन्म ऐसा ही लेता है कीचड़ में। इसलिए माया के चक्कर में नहीं पड़ना है, ये अंतिम श्लोक है सकाम कर्मियों का। जो इस प्रकार से मोहग्रस्त होकर कर्म करते हैं, मुझे ही इंजॉय करना है इस हिसाब से, इस विचार से कर्म करते हैं, उनका प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंतिम कंक्लूजन में कह रहे हैं उनका पतन हो जाता है। भगवान इसी श्लोक को करेगी, ये लोगों का पतन होता है, इसलिए सुनो मैं जो कह रहा हूं, उपदेश को सुनो, उसको धारण करो और युद्ध करो। जब देखिए सांख्य, सांख्य योग बुद्धि योग अर्थात भक्ति योग, उसके पश्चात भगवान ने कहा है सकाम कर्म, और अब आगे का जो श्लोक है उसमें भगवान निष्काम कर्म थोड़ा अब और ऊपर की बात बताएंगे। बीच में क्या है भगवान देखिए दोनों विषयों को कितना बैलेंस लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों बातों को कितने अच्छी तरह से बताते हुए चल रहे हैं कि आपको अभी निर्णय ले सकते हैं, आप तुरंत क्या सही है क्या गलत है, अभी अपने आप को सोच सकते हैं मैं क्या कर रहा हूं, अरे मैं तो ये कर रहा हूं, अगले श्लोक में पता चलेगा कि क्या करना चाहिए। सभी विषयों में इस प्रकार से भगवान बहुत अच्छे से अर्जुन को समझा रहे हैं। तो इन सारे उपदेशों को हमको क्या करना है? धारण करना है। जानते तो सभी है भाई, और बिजली के जैसा फ्लैश होता है फिर बुझ जाता है, फ्लैश नहीं होना चाहिए। जब फ्लैश होता है तो बढ़िया अच्छा लगता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की कोई प्रश्न है? एक प्रश्न पूछिए, वन क्वेश्चन। वहां पे भी कर्मों से मुक्ति तो है ही नहीं ना, कर्मों से मुक्ति होती तो इंद्र को भागना नहीं पड़ता था। कई बार इंद्र को भागना पड़ता है, कई बार एक बार इंद्र सुअर बन गया है कि नहीं, अर्थात वहां पे भी भोग है, कर्म का बंधन है, भोग का ही तो सबसे बड़ा धाम है वो। ये सब भौतिक प्रकृति में ही है सारे, जो पुण्य हो सकता है वो यही हो सकता है। यहाँ जितना कमाना चाहते हो कमा लीजिए, फ्री, मतलब आसानी से कमा सकते हैं, डिफिकल्ट भी नहीं है कि नहीं। हरे कृष्ण। होता है यहाँ आत्म साक्षात्कार। देखिए जितने भी कथाएं हैं बहुत भागवत में, जितने भी कथाएं हैं, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, पृथ्वी महाराज, जितने भी, सभी को साक्षात्कार यहीं पे हुआ है। भगवान का दर्शन भी यहीं पे हुआ है, आत्म साक्षात्कार भी यहीं पे हुआ है। इवन इस युग में भी कई लोगों को साक्षात्कार हुए हैं, हम देखते हैं। इतर संप्रदाय में जो अच्छे शुद्ध सात्विक भक्ति किए हैं उनको भी भगवान ने दर्शन दिए। मीराबाई को भी आत्म साक्षात्कार हुआ है। बस ये मेहता जो पूर्व जन्म के हिसाब से क्वालिफाइड थे वो तो निश्चित बात है कि पूर्व के कर्म निश्चित तौर पे इफेक्टिव करते हैं, इफेक्ट होता है। पूर्व के कर्म का जो है, संचित कर्म का जो एक विशेष भाग है वो हमको मिलता ही है, उसके अनुसार ही हमारे अभी के कर्म होते हैं, इसमें कोई राय दो राय नहीं। पर ब्रह्म संहिता में क्या कहा है, कर्म निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा। आप यदि कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा, यदि भक्ति करते हैं तो कर्म निर्दहति। कर्म लेके आए हैं हम, वो भी लोग आए थे, पर उन्होंने क्या किया, भक्ति की तो कर्म निर्दहति, कर्म पकड़ गए। हम लोग आए हम क्या कर रहे हैं, हमको कर्म निर्दहति, कर्म को काटना है, आत्मज्ञान प्राप्त करना है, आत्म साक्षात्कार लेना है, तो पहले हमको कर्मों से फ्री होना पड़ेगा। तो कर्म फ्री होने की ये प्रोसेस है भक्ति। ये भक्ति में शुद्धता से रहना चाहिए, धारण कृष्णा कॉन्शियसनेस धारण करना चाहिए, मतलब शुद्ध भाव से कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, जो विधि पूर्वक बताया है उसका पालन करना चाहिए। यदि वो होता है तो निश्चित तौर पर साक्षात्कार है। डिफिकल्टीज बहुत है, डिफिकल्टीज बहुत है। एकाग्रता के लिए मन, देखिए मन का मुख्य स्वभाव है चंचलता। मन आपको अच्छे कार्य में कभी भी सपोर्ट नहीं करता है। आपको पता है एक व्यक्ति ऐसा है जो डोन या कोई सेवा के लिए हम उसके पास जाते हैं, नहीं बोलता है पहले। मान लो कहीं फेस्टिवल होता है, हम बोलते हैं प्रभु जी आप मंदिर में नहीं आते जब तक कुछ नहीं करते, पर मंदिर के लिए डोनेशन दे दो या कोई फेस्टिवल के लिए कोई दान करो। तो हमको पता है कि व्यक्ति दान भी नहीं करता है, तो हम पहले ही समझ जाते कि इसके पास जाते हुए क्या करना चाहिए। इसको पहले तो प्रसाद के लिए आमंत्रित करना चाहिए, इसको कुछ मिठाई का बॉक्स देना चाहिए, प्रभुपाद जी ने जो हमको सिखाया है वो करना चाहिए। अर्थात उस व्यक्ति को कुछ ऐसी जगह पे उसका उसको प्रलोभन देना चाहिए। उसी प्रकार से हमको ये भी बात पता है कि जब भी भक्ति के लिए मैं कुछ ऊपर के स्टेज पे जाना चाहूंगा, सबसे पहला ऑब्स्टेकल मेरा ही मन है, वो मन मुझे आगे जाने नहीं देगा। अब मन को कैसे प्रलोभन दे सकते हैं, हमारे ही मन को, हमारे विचारों को। मन अर्थात विचार, मन मीन्स बंडल ऑफ थॉट, विचारों का बहुत बड़ा बंडल अर्थात मन। तो मन हमको भक्ति में आगे बढ़ने नहीं देता है। इसका कारण क्या है कि ये जो विचार है ये बहुत सारे, उसमें के कुछ विचार जो है वो विपरीत है। वो जो कुछ विचार जो विपरीत है उनको खाना मत दो, डोंट गिव देम फूड। अर्थात उन विचारों को प्रकृति के संपर्क में आने मत दो। जब प्रकृति के संपर्क में वो विचार नहीं आएंगे तो वहां सप्रेस हो जाएगा। इट्स अ टेक्निक, उसी को कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन, या जो भी टेक्नोलॉजी टेक्निक कहते हैं आजकल, कॉन्सेंट्रेशन का टेक्निक, ध्यान धारणा वगैरह वगैरह ये सब है, उसी को कहते हैं। उसमें क्या होता है कि जो इस प्रकार के विपरीत विचार है उनको वहीं पे रुकाया जाता है, उनको वो विषय नहीं दिए जाते हैं। विचारों को विषय चाहिए, वो विषय से उनको स्टार करते हैं, भूखे रखते हैं। जड़ता इसलिए नहीं आती है, यदि कोई दूसरे संप्रदाय में हो तो निश्चित तौर पर जड़ता आएगी, पर भक्ति संप्रदाय में इसलिए जड़ता आती नहीं क्योंकि उसी समय आपको एसोसिएशन चाहिए। एसोसिएशन अर्थात शास्त्रार्थ, शास्त्र के ऊपर चर्चा। एसोसिएशन डजंट मीन दैट कि आप साधु के बाजू में बहुत एसोसिएशन ले रहे बैठे हैं और जो बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं, दैट्स वो उतना स्तर का एसोसिएशन नहीं है। क्वालिटी एसोसिएशन, क्वालिटी एसोसिएशन अर्थात शास्त्रार्थ, उसका वही तो तपस्या है कलयुग में। हमको हिमालय में जाके तो नहीं बोला है तपस्या करने के लिए, केवल ये करना है कि साधु संग सर्व सिद्ध हो, साधु संग से सारा सिद्ध हो जाएगा, होता ही है। और यही सबसे बड़ा नुकसान है, साधु का संग नहीं हो, इसीलिए तो कहते हैं शास्त्र। हमारे जीवन का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? शास्त्र, साधु का संग नहीं है, ये सबसे बड़ा नुकसान है। यदि वो एसोसिएशन मिल जाए, हम देख सकते हैं कि कितना, उतने एसोसिएशन के तुरंत बाद कितनी देर तक हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है, उत्साह रहता है, निश्चय हो जाता है। लेकिन जैसे ही एसोसिएशन नहीं मिलता है और दूसरा एसोसिएशन मिलना शुरू हो जाता है, अर्थात जो मन में जो वो विपरीत विचार है उनको खाद्य मिलता है और वो पावरफुल हो जाते हैं, इसलिए ध्यान नहीं लगता। बहुत बार ऐसे होता है। तो ये ध्यान लगना और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना और अपने पुराने कर्मों से छुट्टी पाना, ये सब का जड़ यदि देखा जाए वैसे तो साधु संघ है, शुद्ध भक्त का संघ। जितना मिल सकते, जितना भी मिले। हमने किसी वरिष्ठ भक्तों से बहुत सालों पहले चर्चा की थी, ये प्रश्न हमारा भी था बहुत सालों पहले, तो उन्होंने हमको बोला कि अभी ये कलयुग का और ये जो फैसिलिटीज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसका बेस्ट यूज करो, बोले मेक द बेस्ट यूज ऑफ ऑल दिस थिंग। तो बोले कैसे? तो बोले रोज प्रभुपाद जी का एक लेक्चर सुनो, एवरी डे पंच ऑफ प्रभुपाद, पंच मतलब एक पंच, प्रभुपाद जी का पंच अर्थात प्रभुपाद जी का एक लेक्चर एवरी डे। रूपा जी कुछ कुछ लेक्चर आधे घंटे के, 20-20 मिनट के भी है। कुछ हमको संग नहीं है तो ये प्रभुपाद जी का डायरेक्ट संग मिल सकता है वाणी के द्वारा, एक लेक्चर रोज। मैं कई सालों तक वैसा किया, कुछ भी कोई भी लेक्चर उठा लीजिए और कोई भी प्ले कीजिए और ध्यान से 20-30 मिनट सुनिए आधा घंटा, दैट इज द क्वालिटी एसोसिएशन। If हमको एसोसिएशन नहीं मिल रहा है तो की बात, एसोसिएशन है, संग मिल रहा है साधु का, बहुत अच्छी बात है, शुद्ध भक्त का संग है तो बहुत अच्छा है। और उस समय यदि नहीं है तो ये प्रभुपाद जी का संग कर सकते हैं। कहाँ पे? गांव में। अपने अपने विचार है, पर प्रभुपाद जी तो ऐसी जगह में जाके प्रीच किए और ऐसी जगह जाने के लिए कहे, वो तो कहे कि गांव गांव में जाओ, यू आर माय सोल्जर्स, ड्रॉप द बॉम्ब्स, प्रत्येक गांव के ऊपर आक्रमण करो, दैट्स व्हाट प्रभुपाद से। प्रत्येक भक्त के विचार है, अनुभव है, प्रीचिंग कैन बी डन एनीवेयर एवरीवेयर एनी टाइम ऑल टाइम, दैट इज बिकॉज दिस इज डिवाइन, दिव्य है, पावरफुल है। अपने अनुसार, अपने स्थिति काल परत्वे, हमारे ऊपर जो भी बंधन है, शारीरिक मर्यादाएं हैं या मानसिक मर्यादाएं हैं, ये मर्यादाएं हैं हमारे ऊपर, सभी के ऊपर है, उसके अनुसार हम कुछ एक डिफाइन कर सकते हैं कि मैं ये यहाँ पे ये कार्य करूँगा या करूँगी। वो हमारे स्थिति काल परत्वे हमको डिफाइन करना है। हमारे प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर कुछ ना कुछ मर्यादाएं हैं, हमारे ऊपर भी मर्यादाएं हैं, वो मर्यादाओं के अनुसार हमने प्रचार करना चाहिए, मैं कहाँ कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, वो फैक्टर इंपॉर्टेंट है। तो जो कुछ भी कहते हैं वो मर्यादाओं को ध्यान में रख के शायद किया कहा होगा। तो ये तो वेरी मच अपना इंडिविजुअल सोच है, नहीं? तो शहर कितने हैं भारत में, जो पॉपुलेशन जनसंख्या है उसके मेरे ख्याल से 85% जनसंख्या गाँव में है, उससे भी ज़्यादा होगा, 15% अभी बढ़ गई है तो 20% होगी शहरों में, 80% क्या नहीं, इमेजिन कैसा होगा चैतन्य महाप्रभु का मिशन सक्सेसफुल। चैतन्य महाप्रभु नगर आदि ग्राम, गांव और नगर, नगर नगर गांव गांव मेरे नाम का प्रचार करो पहले चैतन्य महाप्रभु। और वो प्रभुपाद जी का मिशन है, दैट इज द मिशन ऑफ प्रभुपाद। चैतन्य महाप्रभु की वाणी को, वाणी की सेवा करना वो तो हो गई, पर प्रभुपाद जी का मिशन है कि प्रत्येक गांव में ये नाम का प्रचार हो। ठीक है, हरे कृष्ण।